प्ररूपणा देखेंगे। प्ररूपणाएं हमने कितनी देखी थी याद है? 20 प्ररूपणाएं, उसमें से दो विभाजन किए थे दीपाली, मेन टू पार्ट्स किए थे प्ररूपणाओं के, कौन कौन से? हाँ, गुणस्थान और मार्गणास्थान। तो अभी मार्गणास्थान है, उनको उपचार से सारे उनको हमने मार्गणा में बता दिया, परंतु मार्गणा एक्चुअली है कितनी है? 14 मार्गणाएं हैं। और अन्य कौन सी 5 और प्ररूपणाएं रह गई? हाँ बोलो, संज्ञा, संगिनी, संज्ञा और उपयोग, ये बराबर है। ऐसे 20 प्ररूपणा जीव संबंधी, इन्हें जीव का वर्णन अलग अलग संयोगों की अपेक्षा से, अलग अलग उनके भावों की अपेक्षा से, ऐसे 20 प्रकार से जो वर्णन आता है तो प्ररूपणा कहते हैं। उसमें से हमने जीव समास देखे, पर्याप्ति देखी और प्राण भी देखे। आज संज्ञा नाम की प्ररूपणा देखकर मार्गणा के बारे में हम जानना चालू करेंगे। हाँ, पूर्ण होने के पहले चालू तो हो जाती है, इंद्रिय पर्याप्ति भी चालू हो जाती है। हमने देखा था कि जिसको 6 पर्याप्ति है वो अपर्याप्त अवस्था में 6 की 6 चालू हो गई, एट ए टाइम 6 ने दौड़ना चालू किया, पहले एक 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 समाप्त होता है, तो 6 की 6 चालू तो हो गई, परंतु वो एक भी पूरी होने के पहले ही जीव भी मर गया। हाँ, तो इंद्रिय पर्याप्ति चालू है ना, और वहाँ शक्ति अपेक्षा लेना, उसका कार्य नहीं हो रहा है परंतु शक्ति अपेक्षा है। वो शक्ति अपेक्षा क्या है? श्वासोश्वास शक्ति अपेक्षा क्या है? वो इंद्रिया ने भावेन्द्रिया रूप लेना है, वहाँ इंद्रियों की रचना नहीं लेना। जीव की जो शक्ति है, ज्ञान का उगाड़ है ना, उसको आयु जैसे पहले समय से चालू हो गई, सेवायु समझे किसी की चालू हो गई, तो वहाँ वो पंचेन्द्रिय जीव है कि नहीं है? तो पंचेंद्रिय नाम कर्म का भी उसका उदय चालू है और उसका ज्ञान का भी उतना क्षोभ चालू हो गया। अभी वो उपयोग रूप कितना है उसकी बात नहीं चल रही है। हाँ, भावे उत्पन्न क्या होना है? भावेंद्रिय नहीं, जीव का ही है ना, जीव का ज्ञान तो है ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भावेंद्रिय तो पहले से है ही, पहले समय से ही है। हाँ है, भावेंद्रिय तो होने का सवाल ही नहीं है। जीव का तो ज्ञान भी प्रकट ही है ना, जीव का स्वभाव ही है वो, उसमें कुछ डेवलप होने की बात ही नहीं है। भावेंद्रियों में आत्मा प्रदेशों से जीव जानता है, तो आत्मा के प्रवेश है कि नहीं है, है ना? तो फिर वो तो उसका जो ज्ञान का उघाड़ है वो भी है उतना है, क्योंकि कर्म का क्षोभ भी चल रहा है वहाँ, ज्ञानावरण का क्षोभ चल रहा है ना। तो ज्ञानावरण का कर्म का क्षोभ तो अभी जिसका जितना उदय जितना उपशम है वो तो चालू है जितना है वो, तो उसकी भावेंद्रिया तो है ही। अब बात रही द्रव्येंद्रियों की, और देखिए कोई अंधा मनुष्य है तो उसकी द्रव्येंद्रिया नहीं बनी है, तो भावेंद्रिया है कि नहीं उसकी? वैसे वहाँ अपर्याप्त अवस्था में भावेंद्रियों का द्वारा उनका वैसे बाहर की चीजों का ग्रहण भले नहीं हो, परंतु वो शक्ति तो है उसकी पूरी, जितना ज्ञान का उघाड़ है वो पूरा का पूरा वहाँ विद्यमान है। इसलिए इंद्रियों में तो गिना उसको, प्राणों में गिना है उसको। शक्ति की पूर्णता होना, श्वासोश्वास लेने की शक्ति, शक्ति की पूर्णता, शक्ति की पूर्णता। हाँ, ये आहार वर्गना वगैरह लेना सारे, श्वासोश्वास में भी, हाँ उद्गल की अन्य वर्गनाएं भी लेना, जैसे हवा भी अंदर लेना छोड़ना, वो तो अंदर सारा हो जाता है ना। आहार वर्गना, मनोवर्गना। अभी मनोवर्गना वो तो द्रव्यमन की रचना तो पहले ही हो गई, अब यहाँ मन के द्वारा उपदेश ग्रहण करने की शक्ति वो होगी पर्याप्त, और एक्चुअल उपदेश ग्रहण करना, उसको स्मरण करना, याद रखना, ये कार्य है। ये हुआ प्राण। प्राण में ऐसा ही लेना कि आप उसके, ये नहीं, वो द्रव्येंद्रियों के माध्यम से वो जानने का जो कार्य है एक्चुअल, वो हुआ प्राण। वो तो पहले पर्याप्त नहीं होती, यहाँ प्राण के बात चल रही है। द्रव्यमन की रचना वो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति में उसमें भी आ गई, क्योंकि वो शरीर की रचना है ना, शरीर का एक अंग है द्रव्यमन, ये शरीर का अंग है। और वहाँ के आत्म प्रदेशों में ऐसे भाव मन रूप जो वहाँ उपयोग रूप शक्ति तैयार होती है, जानने रूप जो शक्ति है, मन के द्वारा जानने रूप आत्मा की विशिष्ट शक्ति, वो भी है। उसके साथ साथ लेना उसको भी। पर्याप्ति में तो क्या है कि वो वैसे करने की शक्ति उत्पन्न होना, और एक्चुअल जो कार्य होगा वो प्राण में लेना। हाँ, पांचों इंद्रिया है, अपर्याप्त है ना वो, अपर्याप्त है। अभी मन पर्याप्ति भी नहीं उसकी पूरी, उसकी तो आहार पर्याप्ति भी पूरी नहीं हुई, अपर्याप्त लिया आपने। हाँ, कहाँ लिया आप? इंद्रिय पर्याप्ति और इंद्रिय प्राण में घोटाला कर रहे हैं। देखो, संगी पंचेंद्रिय है, यानी उसके पास भाव मन है कि नहीं, उतना क्षोभ है। अभी द्रव्य मन की रचना उसकी हुई नहीं है, उसकी इंद्रिय पर्याप्ति कहाँ पूरी हुई? चालू हो गई, चालू तो छह के छह एक साथ चालू हो गए, परंतु उसकी आहार पर्याप्ति भी पूरी नहीं, जो पुद्गलों को खलरूप रसरूप परिणाम आना था वो भी नहीं हुआ। तो आगे की रचना तो भूल ही जाओ, हड्डी चाम ये सारा कुछ नहीं बनेगा उसको। वो भाव इंद्रिया है, अभी अभी सॉलिड लिक्विड ही नहीं हुआ तो उसका मन कैसा बनेगा? ये बताया है, बताया था ना, ये बताया था, और हर एक को एक एक अंतर मुहूर्त लगता है, वो सारा मिलकर भी एक अंतर मुहूर्त गिनाएंगे। वो द्रव्य मन की बात आप उसमें नहीं लेना, द्रव्य मन द्रव्य इंद्रियां वो तो पूरी होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो शरीर का अंग है ना, ऐसा लेना, शरीर का अंग है वो, शरीर की रचना पूरी होगी तब वो पूरे होगा, पहले तो यहाँ पर्याप्ति उसकी शक्ति शक्ति लेना, और इंद्रियों में भी, इंद्रियों पर्याप्ति में इंद्रिय के द्वारा जानने रूप शक्ति का निर्माण होना, द्रव्य इंद्रिय की रचना होना ऐसा नहीं लिखा उसमें, आप फिर से पढ़ना पर्याप्ति वाला प्रकरण। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, 138 पेज। हमने गत पत्र में देखा था कि जीव का चैतन्य व्यापार उसका भाव प्राण है, कल बात आई थी नहीं, और वो भाव प्राण से रहित कभी होता ही नहीं जीव, इस प्राण की परवाह किए बिना यानी उसके बारे में सोचे बिना, मिला सिद्धार्थ शुरू में, हम दिन रात किसके पीछे भाग रहे हैं, कौन से सुख की ओर आशा भरी निगाहें लगाए बैठे हैं, इस बात का विचार करने की भी किसी को फुर्सत नहीं है, उसका विचार भी नहीं आता क्योंकि दौड़े जा रहे हैं ना हम सारे सुबह से शाम तक, एक भाग रहा है इसलिए दूसरा भागता है, दूसरा भाग रहा है इसलिए तीसरा भागता है, इस प्रकार की परिस्थिति सर्वत्र दिखाई दे रही है। बेटियों, तुम्हारे दादाजी ने बहुत पहले से हम सबको पैसों का व्यवस्थित हिसाब लिखने की आदत डाली थी, वह परंपरा आज भी हमने कायम रखी है और तुम्हें भी बचपन से इसकी शिक्षा दी है, पैसे कहीं बिना वजह खर्च तो नहीं होते हैं, इस बाबत में हम सावधान रहते हैं, नल से पानी बिना वजह बहता जाता हो, पानी की बर्बादी होती हो तो हम सावधानी पूर्वक नल बंद करते हैं, पैसे और पानी का मूल्य हमारी समझ में आता है परंतु अपने प्राणों की कीमत अर्थात चैतन्य का मूल्य हम कभी अभी तक समझे नहीं है, यानी अपना जो उपयोग है ज्ञान का व्यापार है कहाँ कहाँ बर्बाद होता जाता है इसका कभी हम विचार ही नहीं करते, हिसाब की तो बात ही दूर, सुबह से शाम तक हमने क्या क्या किया इस ज्ञान व्यापार के द्वारा, ऐसा अगर सोचेंगे उसका हिसाब लगाएंगे, पैसों का तो हिसाब लगा दो ना, आज कितनी आमदनी हुई और आज कितना खर्चा हुआ, तो इसका तो हम हिसाब लगाते ही नहीं कभी, अपना चैतन्य उपयोग हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, वह बिना वजह बर्बाद तो नहीं हो रहा, इसकी सावधानी की तो बात छोड़ो, उस संबंधी विचार भी कभी हमारे मन को स्पर्शता नहीं है। शास्त्र में तीन प्रकार की चेतना का कथन आता है, अब यहाँ चेतना की बात आई तो उस अनुसंग में ये तीन प्रकार की चेतना का यहाँ विषय लिया है, ये नाम भी शास्त्र में हमेशा आएंगे, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, कौन से तीन है बोलो, हाँ चेतना और ज्ञान चेतना, सिद्धार्थ बताओ आप बताओ, कर्म चेतना ज्ञान चेतना, अभी इसका अर्थ देखेंगे क्या है, एकेंद्रियादि पर्यायों में यह जीव दुखी है, उस दुख को दूर करने का कुछ उपाय भी वह नहीं करता, कर्म के फल में स्वयं को सुखी दुखी अनुभव करता है, सुख दुख का तो अनुभव चल रहा है उसका वहाँ भी, लेकिन ये पर्याय में भी वो अपने को दुखी अनुभव कर रहा है, वहाँ दुख है उसको, उन जीवों की चेतना चेतना यानी ज्ञान दर्शन मात्र सुख दुख का वेदन करने में ही अटकी होने से उसे कर्म फल चेतना कहते हैं, कर्म का फल है ना वहाँ, लेकिन ये जीवों में अन्य अन्य कर्मों का उदय चल रहा है कि नहीं, ज्ञानावरण का है, नाम कर्म के अलग अलग प्रवृत्तियों का सारा का फल भोग रहे, उसके कारण उसको दुख भी हो रहा है, उसका कोई उपाय वहाँ तो करने का कोई सवाल ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, मन ही नहीं है, तो उसका कोई उपाय करे ऐसी की बात नहीं है, तो वहाँ क्या है उनको कर्म फल चेतना, उनका ज्ञान कर्म का द्वारा जो सुख दुख मिल रहा है उनको उसी को भोगने में अटका है, जो जीव इन दुखों के निवारण एवं सुख की प्राप्ति के लिए अज्ञान व श्राग वेशादी करता है, अब हमारे जैसे लोगों की बात सुनो, हम क्या करते हैं, कहीं दुख पता लगता है, बहुत गर्मी हो रही है तो चलो ये पंखा लगाएंगे या अन्य कुछ कुछ करेंगे, तो कुछ अज्ञानवश कुछ न कुछ करता है, तो अज्ञानवश क्या करता है, राग द्वेषादि करता है। परद्रव्य की क्रिया तो ये कर सकता नहीं, मगर मानता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना। परद्रव्यों को परिणमाना चाहता है और मानता भी है कि वह परिणमा सकता है, परंतु अन्य द्रव्यों की पर्याय पलटाने में असमर्थ होने के कारण राग द्वेष करता है। यह उसका भाव कर्म है और ज्ञान अर्थात चेतना उसी में अटकी रहने से, उसी में ये राग द्वेष करने में ही अटकी होने से तथा उन रागादिकों को अपना स्वभाव मानने से वह जीव कर्म चेतना वाला कहा जाता है। अब रही ज्ञान चेतना, जो जीव कर्म के उदय में होने वाले सुख दुख, देखो ज्ञान चेतना की बात ध्यान से देखो, कर्म के उदय में सुख दुख तो हो रहे हैं, उसको वो जानता भी है और रागादि भाव उसको भी जानता है, परंतु कैसे जानता है, इनसे अपने ज्ञान को भिन्न अनुभवता है। मैं ज्ञान भिन्न हूँ और ये मुझ में ही अभी जो रागादि मुझे जानने में आ रहे हैं, राग द्वेष अपने में होते हैं ना, क्रोध मान माया लोग अपने को समझते ना, क्रोध आ रहा है, माँ क्या कहती है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम मेरे सामने से हट जाओ, तो अपने को आ रहा है इसका पता चलता है। तो हम जो जानने वाले भिन्न है और ये जो आता है जाता है ये राग द्वेष के परिणाम भिन्न है, ऐसा वो भिन्न अनुभवता है। त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव में यानी जानने वाले तत्व में ज्ञान को लगाता है। कल शाम को बात आई थी ना पंचाध्याय में, त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव जीव का जो सामान्य स्वरूप एक रूप निगोद से लेकर सिद्ध तत्वों को जो सेम है, सिमिलर है, तो ऐसा जो त्रिकाली सामान्य स्वरूप है उसमें अपने ज्ञान को लगाता है, उसमें ही जानने में वो उपयोग रूप रहता है और अभेद रूप से स्वयं को ज्ञायक रूप से अनुभव करता है। वह जीव ज्ञान चेतना का धारक है। यानी ज्ञान चेतना का धारक किसको कहा, सम्यक दृष्टि जीव को। अन्य जीवों को ज्ञान नहीं है ये बात नहीं है, परंतु उनकी चेतना क्या कहाँ कहाँ की है, चेतना अपने को चेतना रूप नहीं अनुभव कर रही, कोई तो अपने को सुख दुख रूप अनुभव कर रही है और कोई राग द्वेष ही मेरा स्वभाव ऐसा अनुभव कर रही है। तो किसी को कर्मफल चेतना है, कर्म चेतना है, और ये जो सम्यक दृष्टि है उसको ज्ञान चेतना है। चौथे गुण स्थान से जीव ज्ञान चेतना का धारक होता है, यानी उसको ज्ञान चेतना चालू हो जाती है। चौथे पांचवे गुण स्थान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होने पर भी, देखो ऐसा नहीं है कि एक इंद्रिय को ही खाली कर्म फल चेतना होती है, सम्यक दृष्टि जीव को भी जितना कर्म का फल मिलता है उसमें सुख दुख रूप भी उसको अनुभव है, उसको राग द्वेष भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि चौथे गुण स्थान से राग द्वेष पूरे मिल गए, नहीं तो पूरा वितराग हो जाता अरिहंत भगवान। चौथे गुण स्थान वाले को भी अनंत अनुबंधी गए हैं, अभी बाकी के तीन चोपड़ी उसको है तो उसका अनुभव भी होता है, परंतु वो अपना नहीं मानता। ये ज्ञान चेतना और कर्म चेतना में फर्क है। देखो यहाँ क्या लिखा कि चौथे पांचवे गुण स्थान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होने पर भी वेदन की अपेक्षा है, यानी उसके ज्ञान में तो आ रहा है कि अपने में इतना सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, अपने के इतने राग द्वेष हो रहे हैं, परंतु उसका स्वामीपना उसको नहीं है, उन जीवों के उनका स्वामीपना नहीं है। मुनि को ज्ञानानंद परिणति निरंतर विद्यमान होने के कारण ज्ञान चेतना के धारक कहा है। मुख्यतः मुनियों को ही ज्ञान चेतना वाले कहे। यह अध्यात्म अपेक्षा है। अब आगम अपेक्षा ने कर्मों की अपेक्षा से अगर बात करेंगे, जीव को कहाँ तक वो राग द्वेष विद्यमान है, कहाँ तक सुख दुख का अनुभव है, उसकी अपेक्षा अगर बात करेंगे तो उसको कहते हैं आगम अपेक्षा। तो आगम अपेक्षा अध्यात्म ने आत्मा की मुख्यता से जो जो बात हो गई वो अध्यात्म अपेक्षा, आगम अपेक्षा ने छह द्रव्यों की अपेक्षा या पूरा जो जहाँ जितना है उसका ज्ञान कराया जाएगा, निमित्त का भी ज्ञान कराया जाएगा, जहाँ जितने राग द्वेष है उसका भी ज्ञान कराया जाएगा। तो आगम अपेक्षा से क्या है, जब तक राग आदि विद्यमान है, कब तक होते राग आदि विद्यमान, हाँ दसवें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है, तो जब तक राग आदि विद्यमान है तब तक उसके प्रमाण में कर्म चेतना है। प्रमाण में लिखा चौथे गुण स्थान वाले को कितने अधिक राग है, तीन चोपड़ी बाकी है, छठे सातवें गुण स्थान वाले को अभी एक ही चोपड़ी बाकी है, तो जितने प्रमाण में लिखा तो उसके प्रमाण में कर्म चेतना है और जिस प्रमाण में राग आदि है उस प्रमाण में दुख की अनुभूति है। दुख हमें किसका होता है? किसी ने डांटा इसलिए दुख होता है, है ना? कांटा चुभ गया इसलिए दुख होता है, जल्दी खाना नहीं दिया इसलिए दुख होता है। तो यहाँ क्या लिखा है? दुख किससे होता है? राग आदि से दुख होता है। इच्छा यही दुख है, राग यही दुख है। हमें असली दुख किसका है उसका भी पता नहीं है। हम क्या मानते हैं? मम्मी ने एक चांटा मारा इसलिए मैं दुखी हुई, है ना? भाई ने झगड़ा किया इसलिए मैं दुखी हुई। यानी हमने आज तक यही भूल की है। अब ये तो भूल मिल जाएगी जब हमें शास्त्र से पता चलता है कि हमें दुख इस बात का नहीं है कि पर पदार्थ वहाँ है या नहीं है। दुख तो हमें इच्छा का है, दुख तो हमारे अपने राग द्वेषों का दुख है। तो जब तक राग आदि है तब तक उस प्रमाण में दुख भी है। देखो अभी आप बैठी हो, जोर से बारिश आई तो आपको लगता है मुझे दुख हुआ। मुनि भी वहाँ ध्यान में बैठे हो तो वहाँ बारिश होती है तो मुनि को उतना दुख होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, राग कम हो गया। तो जितना राग मिट हट गया उतना दुख भी हट गया। जितना राग है उतना दुख भी है। अभी मुनि को एक कषाय संयोजन कषाय है अभी वहाँ बाकी, तो उतना दुख भी होगा उनको, नहीं तो वो पूर्ण सुखी अनंत सुखी कहना पड़ता मुनि को। तो जितना राग है उतना दुख है। तो हमें दुख किस बात का है? अपने ही राग द्वेष का दुख है। और उससे ही हम राग आदि प्रकट ये दुख देने का, किसने कहा? चढ़ाला में आता है ना कि ये मेरे राग आदि जो है वही मुझको दुख देने वाले। और आज तक हमने पर पदार्थों को दुख देने वाला माना और पर पदार्थों के प्रति और राग द्वेष किए और दुखी हुए। ये मार्ग ही सारा उपाय ही हमने गलत किया आज तक, इसलिए अपना दुख कभी मिलता नहीं है। तो हम दुख का उपचार कहाँ करना चाहते हैं? पर पदार्थ, पर पदार्थ को हटाना चाहते लाना चाहते, परंतु उससे तो दुख मिटता नहीं है। नई इच्छा होती है और नया दुख और चलता ही रहता है। तो ये दुख मिटाने का उपाय जहाँ दुख है वहाँ करेंगे तो ही दुख मिटेगा। तो हमें पहले पहले पता चलना चाहिए कि दुख जो है वो रागादि का है। तो अपने रागादि कैसे मिटे? तो जब तक मिथ्यात्व है तब तक, जब तक मूल है ना रागादि का भी असली कारण क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व हटने पर भी जो थोड़ा रागादि रहता है वो भी कालांतर से आत्मस्थिरता में जितनी वितरागता बढ़ेगी उतना राग वो भी निकल जाएगा। तो यही एक उपाय है। हम उपाय का शायद झूठा करते हैं। जैसे क्या हुआ, साइकिल हम चलाते थे बचपन की मेरी बात है, तो पीछे के पहिए में से हवा छूट गई, हम गए साइकिल वाले के पास, पीछे का टायर पंक्चर हुआ था। तो उसको बोला देखो ये हमारा साइकिल है उसमें हवा भर दो। तो उसने अगले टायर में हवा भरना पंप मारना चालू किया। तो हम देख कहाँ रहे थे? पीछे की ओर। अरे अभी हवा ही नहीं है, हमें बोलते जा रहे अरे और भरो, हवा ही नहीं है, पंक्चर था ना। और वो हवा कहाँ भरे था? पहले वाले, अगले वाले। और हम देख रहे थे पीछे कि इतनी वो पंप मार रहा है, अरे कैसा पंप मार रहा है और मारो। और हम दबा के देखते तो पीछे के पहिए में कुछ हवा ही नहीं दिख रही। तो और मारते मारते क्या हुआ, अगला पहिया भी बस्ट हो गया। ऐसे हमारी बात है, वहाँ तो बराबर समझ में आती है, दूसरे की मूर्खाई दिखती है। तो हमारे उपाय भी ऐसे हो रहे, दुख कहाँ है? अपने में। और उपचार हम कहाँ कर रहे हैं? पर पदार्थों की, उसको लाना चाहते या हटाना चाहते। और वे ही मुझको राग द्वेष निर्माण करते, उत्पन्न कराते हैं, ऐसे मानते हैं। तो राग द्वेष अंदर मेरे कारण अपने से, ये मेरा दोष है। अपने दोष का एहसास पता चल जाएगा तो वो दोष रहेगा ही नहीं। तो अभी ये जो यहाँ लिखा ना, रागादि है, जितने प्रमाण में रागादि है उस प्रमाण में दुख की अनुभूति होने से कर्म फल चेतना भी है। देखो पहले तो हमने क्या देखा कि ज्ञान चेतना चौथे गुणस्थान से चालू हो जाती है और वहाँ भी कर्म फल भी है और कर्म फल चेतना, यानी कर्म फल चेतना भी है और कर्म चेतना भी है, यानी राग द्वेष भी है और सुख दुख का अनुभव भी है। परंतु अभी उसका स्वामित्व पना नहीं है, राग द्वेष को अपने से भिन्न जानता है, इसलिए अध्यात्म की अपेक्षा उसको मात्र ज्ञान चेतना वाला कहा। परंतु वहाँ राग द्वेष विद्यमान है ये बताने के लिए निमित्त की अपेक्षा से, आगम की अपेक्षा से, उसको भी जितने प्रमाण में राग है उतने प्रमाण में कर्म फल से कर्म चेतना भी है, जितने प्रमाण में दुख है ये अन्य बाह्य जो सुख दुख है जो दोनों ही दुखी है उतने प्रमाण में उसको कर्म फल चेतना भी है। ये ख्याल में आया? क्योंकि ये टॉपिक कभी कभी शास्त्र में आता है ना, ज्ञान चेतना कर्म चेतना कर्म फल चेतना। अपना ये कर्णानियोग का विषय नहीं है, परंतु ये इसके साथ भाव प्राण के साथ इसको ले लिया है। हे जीव, नीचे से तीसरा करेगा, हे जीव अनादिकाल से तू अनंत भव में भटकता फिर रहा है। देखो यहाँ पत्र तो रीना मोना को लिख रहे हो, हम तो भी रीना मोना रूप नहीं, वो भी कैसे जीव रूप ही दिख रहे, अरे वो कहाँ भटक रहे जीव। तो ऐसी करुणा आती है कि अरे ये अपना स्वरूप समझ ले। हे जीव अनादिकाल से तू अनंत भव में भटकता फिर रहा है, अब वर्तमान का यह एक भव तू इस कार्य में लगा दे, स्वयं को पहचान। यानी अनंत काल से तो हम अनंत भव करते हैं, अनादिकाल से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, तो अभी जन्मे हैं तो मरेंगे तो निश्चित है, और इसके आगे भी न जाने कितने भव होंगे। तो मान लो कि एक भव बिगड़ गया तो बिगड़ गया, यानी जिसे तो बिगड़ा हुआ मानता है इसमें लगा लो, तत्व ज्ञान में लगा लो, समझ ले बिगड़ गया, वो बिगड़ेगा नहीं, वो आता है ना तो मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, वो तो ठीक है ने उस क्या कहते हैं आप शेरडी इक्षु गन्ना, गन्ना कड़वा हो तो भले वो बो दे तो बहुत सारे वहाँ मीठे गन्ने मिल जाएं, ऐसा बताते। तो ये एक भव इसमें लगा दो और देखो कैसा फल मिलेगा, तो भव रहित हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि नहीं तो अनंत भव चल ही रहे हैं, तो उसमें मान लो कि एक भव इसमें लगा दो। अब वर्तमान का यह एक भव तो इस कार्य में लगा दे, स्वयं को पहचान। कौन से कार्य में? ये समाज कार्य नहीं करने को बोल रहे, अपने को पहचानना इतना ही कार्य करना। देख तेरा भव भ्रमण मिट जाएगा। इस संसार में पाई जाने वाली विविध अवस्थाएं पुण्य पाप का खेल, किसी को किसी कैसे पुण्य पाप के उदय आते रहते ना, इसलिए उसको कहा पुण्य पाप का खेल। रागादिकों की तीव्रता, परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, धन संपत्ति के पीछे पागल की भांति दौड़ आदि सब देखकर क्या तुझे इनसे भय नहीं लगता, दुख नहीं भाषित होता? यानी अपने परिणामों को या अपने आजू बाजू वालों इनको परिणामों को देखकर क्या तुझे ऐसे नहीं लगता, अरे बापरे मैं भी इसमें कहीं ना कहीं न खो जाऊं। शास्त्र में कथन आता है कि पंचम काल के जीवों के परिणामों का वर्णन सुनकर चतुर्थ काल के कितने ही जीवों को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। अभी हम छठे काल का वर्णन सुने, ऐसा ऐसा होगा, हमें डर लगता है अरे बापरे कैसा होगा कैसा वातावरण होगा, तो वैसे वे चतुर्थ काल के जीवों को पता था पर पंचम काल के जीव ऐसे टेढ़े परिणाम वाले होंगे, उनको कोई सही उपदेश देगा तो हाँ इसमें इसके पीछे इसका कुछ होना चाहिए। कभी सीधा ग्रहण नहीं करेगा, सरल मन से कोई चीज ग्रहण नहीं करेगा, ये ऐसे ही टेढ़े मन वाला ही होगा, उसके विपरीत परिणाम ही होंगे। वो आता है ना कि जब विभीषण रावण का पक्ष छोड़कर राम के पास गया तो लक्ष्मण ने उसको राम को बोला कि हाँ इसका कुछ इसमें ऐसा दाव पेच है, इसमें हेतु है कि ये अपने पार्टी में आकर कुछ हाँ स्वार्थ है, कुछ स्वार्थ के लिए आया है। तो उसने बोला कि मैं सच्चा हूँ, यदि मैं सच्चा न हो तो मुझे ऐसा फल मिले कि मैं मरकर पंचम काल में मनुष्य होकर पैदा हो जाऊँ, इतना बुरा फल। शास्त्र में आती है बात, ये पद्म पुराण में है बात। तो अपने परिणाम उनको देखकर देखो, देखो वहाँ कैसे सरल परिणाम जीव हो गए। परंतु इन्हीं परिणामों में दिन रात मग्न रहकर हम आनंद मान रहे हैं, भविष्य की ओर आशा भरी निगाहें लगाकर बैठे हैं, धन्य है हमारी। हे जीव अनंत भवों के उल्टे संस्कार तुझे इस एक भव में मिटाने हैं। अनादि से मिथ्यात्व के संस्कार है तभी सम्यक को प्राप्त करने हैं, तो ये सारे संस्कार मिटाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो तेरे पुरुषार्थ का यह अवसर आया हुआ है, संधि प्राप्त हुई है। स्वयं के चैतन्य स्वरूप का स्वीकार करके अंतर्मुख होकर उसमें एकाग्रता करने पर हमें अपने अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा इसके लिए? हाँ बेटा, कितने उपवास करने पड़ेंगे? उपवास कितने करने पड़ेंगे? हाँ जरा जोर से बोलो, उपवास करने पड़ेंगे क्या? क्या व्रत करने पड़ेंगे? फास्टिंग नहीं, कितने पर्वत चढ़ने पड़ेंगे? क्या करना है? देखो क्या करना है। सेकंड पैराग्राफ, स्वयं के चैतन्य स्वरूप का स्वीकार करके, यानी मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा मानना है। ये मानने में क्या करना पड़ेगा? कुछ कसरत करनी है कि मैं जानने वाला हूँ, इतना मानना है। और क्या करना है? अंतर्मुख होकर, अंतर्मुख है नहीं, अभी जो ज्ञायक है वो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना है। ये शरीर की ओर देखने को नहीं बोला है, अपनी ओर देखना है। और क्या करना है? उसमें एकाग्र होना, यानी उसको ही जानते रहना। पहले मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा स्वीकार करना है सच्चे दिल से, फिर अंतर्मुख होना और उसी को जानते रहना। अब इसमें क्या करना है? कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई बालक है, तो उसमें कोई रुकावट आएगी? क्यों? क्यों सिद्धांत? आसान है कि नहीं है? हमें पता नहीं था आज तक, इसलिए वो दुर्लभ लग रहा था। मुझे ये सबसे आसान चीज है। पर चीज कोई मिलानी है, कोई धंधा व्यापार करना है, पैसे अगर कमाने हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें होगी, क्योंकि वो परवस्तु का परिणाम है। परंतु ये तो मैं स्वयं हूँ और मुझको अपने को जानना है। वो ज्ञान जो जानने का साधन है वो भी मेरे पास मौजूद है। तो हमें कहीं से कुछ लाना नहीं, कहीं कुछ देना नहीं है। करोड़ों रुपए दान देने से मुझे ये प्राप्त होगा, इसी भी बात में। तो एकाग्रता करने पर हमें अपने अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। बेटियों, तुम कहोगी माँ को बार बार क्या हो जाता है? चालू विषय छोड़कर गाड़ी कहीं अन्यत्र भागती है, अपना करना नहीं उसका विषय छोड़कर कहीं घुस गए आत्मा का अनुभव करने के बारे में। अरे जीवो, करने योग्य एक में यही है। करना योग समझाने का तो एक बहाना है। कोई भी अनुयोग पढ़ो, उसमें से यही तो बात निकालनी है कि अपने आत्मा को कैसे पहचानना और आत्मा का अनुभव कैसे करना। तो यहाँ तो करना नियोग के द्वारा उसको समझाया है। असल में तो इसके द्वारा वीतरागता की प्राप्ति ही एकमात्र प्रयोजन है। यानी कितने जीव है, कहाँ रहते, ये सारा प्रयोजन नहीं है। मूल प्रयोजन अपने को पहचानने का है। अब तक हमने गुणस्थान, जीव समाज, पर्याप्ति, प्राण प्ररूपणा देखी। अब संज्ञा प्ररूपणा के बारे में समझकर हम मार्गणा संबंधी अध्ययन करेंगे। अभी ये संज्ञा क्या क्या होती है, कौन सी चार संज्ञा है, यहाँ उसके नाम लिखे देखो। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के निमित्त से जो वांछा यानी वासना उत्पन्न होती है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा से बाधित यानी पीड़ित जीव विषयों का सेवन करके भी इहलोक या परलोक में उन विषयों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर महादुखी होते हैं। यानी उनको वांछा यानी इच्छा उत्पन्न होती है और वो इच्छा से भी दुखी होते हैं। वांछा ही सभी दुखों का मूल कारण है। अन्नादिक खाद्य पदार्थ का देखना, स्मरण होना, उसकी चर्चा सुनना, पेट खाली होना, भूख लगना आदि आहार संज्ञा के बाह्य कारण है। बाह्य कारण यानी बाह्य निमित्त है। सामने दिखते हैं कोई, माँ ने बहुत समोसे बनाए हैं तो भूख लगती है ना? पहले तो भूख नहीं हुई, क्या बनाया है सुनकर भूख लगती है। हाँ, तो उसकी चर्चा सुना, ये सारे उसके बाह्य कारण में गिना है। देखो, पैशन को या इंस्टिंक्ट को या एंगर को नहीं लिया, आहार भय मैथुन कर गया, ये चार। अभी अंतरंग कारण देखो, कल बाह्य कारण और अंतरंग कारण की चर्चा आई थी। अब अंतरंग कारण यानी अभी यहाँ कर्म लेना, नियम रूप कारण क्योंकि बाह्य कारण तो अलग अलग होंगे। कई हमारी सहेली कुछ खा रही तो अपने को भी खाने की इच्छा होगी, बाह्य कारण तो अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं। अंतरंग कारण क्या है, भूख लगने का या आहार की इच्छा होने का, तो देखो इसमें लिखा है असाता वेदनीय कर्म का तीव्र उदय या उदीर्णा अंतरंग कारण है। एक क्षुधा है, तृषा है, इसमें कार्य में असाता वेदनीय का उदय यानी तीव्र उदय या उदीर्णा यानी एक साथ बहुत सारे निषेकों का उदय में आ जाना, बहुत सारे परमाणु एक साथ में उदय में आना, लाइन से आने वाले थे तो एक साथ सारे उदय में आ गए तो भूख लगी या प्यास लगी, ऐसा हो जाता है, उसको अंतरंग कारण का। अंतरंग यानी अपने अंदर है ऐसा नहीं, नियम रूप कारण, उसको अंतरंग निमित्त कहते हैं। यह संज्ञा छठवे प्रमत्त गुण स्थान तक ही पाई जाती है, यानी आहार कौन कौन करता है, पहले गुण स्थान से लेकर छठवे गुण स्थान तक के जीव। मुनिराज ध्यान अवस्था में सातवें से लेकर ऊपर के सारे आहार करेंगे, केवली भगवान को भी आहार होगा, केवली भगवान को जैसे अन्नवती मानते हैं ना, केवली को आहार होता है, वैसे तो हम तो कोई मानते नहीं है इसका। तो छठे गुण देखो, ये गुणस्थान पढ़ने के बाद ये सारी जो पोल पट्टी होगी ना, अन्य अन्य मतियों की कुछ मान्यताएं अलग अलग होती है, तो उसमें हमें तो आसानी से पता चलता है कि छठे गुणस्थान तक ही आहार हो सकता है, आहार संज्ञा हो सकती है, उसके ऊपर तो उनकी वांछा भी नहीं, ऐसा नहीं कि ध्यान में कभी कभी इच्छा ऐसा भी नहीं। पानी से 40 चले सातवें अप्रमत्त गुणस्थान से इसका अभाव वर्तता है, नीचे से तीसरा पैराग्राफ 140 पे। अब दूसरी भय संज्ञा, आहार और भय लिखा ना, चार कौन कौन सी देखी अभी हमने, परिग्रह बराबर। अभी ये दूसरी भय संज्ञा की बात, भीतिदायक प्राणी यानी भूत प्रेतादि को देखना, उनकी कथाएं सुनना, वो टीवी पर भी कुछ आएगा ना हॉरर कुछ, तो उसको देखना, स्मरण करना, स्वयं शक्तिहीन होना आदि भय संज्ञा के बाह्य कारण है। ये बाह्य कारण अलग अलग गिना है। अभी अंतरंग कारण में फिर कर्म को लेना, भय नौकषाय कर्म का तीव्र उदय अंतरंग कारण है। ये नौकषाय कितने हैं, नौकषाय आपको मालूम है? हाँ बोलो, हाँ गिनाओ सारे, जुगुप्ता जुगुप्ता तीन वेद, त्रिवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये नौ नौकषाय, उसमें से यहाँ कौन सा लिया, भय नाम का नौकषाय। अभी आपने कहा है ना भय शोक जुगुप्ता, उसमें से ये भय नाम का नौकषाय, उसका उदय होगा, वो हो गया अंतरंग कारण। उसका उदय हुआ इसलिए मुझको भय लगता, ऐसा नहीं है, मैं स्वयं अपने से भयभीत होता हूँ तब तक उसका उदय वहाँ होगा। एक साथ दोनों बातें होंगी, पहले भय का उदय हुआ इसलिए मुझे भय लगा, ऐसी बात नहीं, जब जब भय लगता है तब तक वहाँ उसका उदय भी विद्यमान रहता है। काम सेवन की वांछा मैथुन संज्ञा है, गरिष्ठ भोजन करना, कामोत्तेजक बातें सुनना, कुशील व्यक्ति के सहवास में रहना आदि इसके बाह्य कारण है, और वेद नौकषाय कर्म की उदीर्णा अंतरंग कारण है। धन धान्यादि परिग्रह इकट्ठा करने एवं बढ़ाने की वांछा परिग्रह संज्ञा है, ये तो हर एक को लगता है अपना परिग्रह बढ़े, धन संपत्ति बढ़ जाए, उसमें क्या अन्य कारण क्या, देखो बाह्य परिग्रह देखना, उसकी चर्चा सुनना, लोभी परिग्रही अन्य व्यक्ति का सहवास आदि इसके बाह्य कारण है। दूसरे की संपत्ति देख देख कर इसको भी लगता है रे अपन भी संपत्ति इकट्ठा करें, और लोग नहीं अलग अलग है, लोभी परिग्रही अन्य व्यक्ति का सहवास, और लोग कषाय की उदीर्णा अंतरंग कारण है। ये अन्य तीन संज्ञा भी सातवें गुणस्थान से ऊपर उपचार मात्र है, उपचार यानी उसका कोई कार्य वहाँ नहीं दिख रहा, बाह्य उसकी एक्टिविटी कुछ है नहीं वहाँ, उनका कार्य नहीं पाया जाता, मात्र उन कर्मों का उदय पाया जाता है। नवे गुणस्थान के प्रथम भाग में भय संज्ञा का अभाव होता है, दूसरे भाग में मैथुन संज्ञा का अभाव होता है, क्योंकि वो कर्म वहाँ तक ही है, इसलिए वहाँ उसकी संज्ञा बताई गई। सूक्ष्म लोभ दसवें गुणस्थान में पाया जाता है, इसलिए तब तक परिग्रह संज्ञा विद्यमान रहती है, उसके बाद नहीं। देखो छठे सातवें मुनि को भी परिग्रह नहीं है, परंतु परिग्रह संज्ञा दसवें तक बताई, क्योंकि लोभ कर्म का वहाँ तक उदय है, सूक्ष्म लोभ का। ऐसे ये करणानुयोग की सूक्ष्मता होती है। चरणानुयोग तो कहेगा नहीं, छह मुनियों को कोई परिग्रह नहीं देगा। इस तरह हमने संज्ञा प्ररूपणा देखी। अब मार्गणा विषय पर चलेंगे। हाँ, मुनि को ही बताया। वैसे तो सूक्ष्मता से देखेंगे तो उनके एक कसाई टोकरी बाकी है, तो अंतरंग में उतने है उनके, इसलिए निर्ग्रंथ भी किसको, ये जो पुलाक बकुश वगैरह जो है ना, उनमें निर्ग्रंथ किसको कहते हैं, ग्रंथ रहित परिग्रह रहित, वो तो अरिहंत भगवान को कहा हुआ। सूक्ष्म कथन ऐसा होता है, यानी वो कोई विरोध नहीं है कि एक मुनिराज ऐसे कहते हैं और दूसरे आधार ऐसे, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य कथन अलग होता है और विशेष कथन अलग होता है। देखो अभी ये 14 मार्गणाएं है ना, उसका विषय हम चालू करेंगे। अभी तक हमने कौन कौन सी प्ररूपना देखी। हाँ दीपाली। हाँ संज्ञा, ये चारों ही बराबर ख्याल में आ गए। अब हम मार्गणा देखें। देखो अब हम मार्गणा विषय पर चर्चा करेंगे। पहले मार्गणा का अर्थ क्या है उसको भी समझेंगे। जीव द्रव्य अरूपी होने के कारण दिखाई नहीं देता। सिद्ध जीव कर्म और शरीर से रहित शुद्ध अवस्था में लोकाग्र में यानी लोकाकाश के शिखर पर विराजमान है, वे तो हमें दिखाई देते नहीं। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है मालूम है, सिद्ध शिला के ऊपर। सिद्ध शिला में नहीं कहना कभी, देखो बीचों बीच सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है, उसके ऊपर वात वलय है 3, और वो अंतिम वात वलय में वो सिद्ध भगवान विराजमान है। जैसे जैसे लोकाकाश का चार्ट देखते हैं ना, ऊपर की लाइन आड़ी, वहाँ उनका माथा टिका हुआ है, के ऊपर नहीं खड़े नहीं रहते, जैसे हम जमीन पर खड़े रहते वैसे नहीं रहते, या सिद्ध शिला पर ऐसे खड़े नहीं रहे हो या बैठे नहीं ऐसे, तो वो एक कोई सपोर्ट नहीं नीचे पैर के नीचे उनके, वो सबके सबके सिर जो है वो एक लेवल पे, अंतिम वात मलय का वो अंतिम जो लाइन हो दूसरे देशों में। तो कोई बड़े ऊंचे है 500 योजन वाले हो, कोई महावीर है वो 7 हाथ वाले हो, तो ऐसे अलग अलग अवगाहना वाले सिद्ध भगवान सबके ऊपर की लेवल एक है। हाँ नीचे पैर कोई बड़े है कोई लंबे है, कोई तो पद्मासन वाले है कोई खड़गासन वाले है, हाँ ऊपर की लेवल एक है। कम ज्यादा है वो पूरा 20,000 योजन का वात वलय है, वात वलय अंतिम वात वलय जो है उसमें वो ऊपर के छेड़े सबके ऐसे एक लेवल में, जैसे हम जमीन पर खड़े रहते हैं तो हमारे पैर एक लेवल में और हाइट सबकी अलग अलग होगी, कोई 6 फुटी है कोई 4 फुटी है, वैसे वो उनके ऊपर से एक लेवल है, नीचे से कम ज्यादा है। हाँ वैसा इमेजिन करो आपको। और सिद्धशिला भी ऐसे एकदम चंद्रकोर जैसी लगा, इतनी है ही नहीं उसकी, बीचों बीच में कितनी है वो 8 योजन थिकनेस है, और एकदम अंत में जैसे मक्खी का पंख है ऐसे इतनी थिन हो जाएगी, एकदम पेपर थिन हो जाएगी टाइप में, तो 8 योजन बीच में, और फैली कितनी है और ये भी दिखाने के लिए ऐसी है सिद्ध शिला, तो इतना कर्वेचर उसमें आएगा ही नहीं। इमेजिन करो ना, जैसे बीच में 8 योजन और ऐसे कितना 45 लाख योजन तक वो टेपरिंग जाएगा। आप सेंटीमीटर मिलीमीटर में कैलकुलेट करोगे तो ऐसे 8 मिलीमीटर होगा और ऐसे 450 किलोमीटर होगा। हाँ, तो पता ही चलेगा इसमें उसके ऐसे बिल्कुल चिन्हित होगा, यानी उसका कर्वेचर बिल्कुल नगण्य होगा। हाँ, इसीलिए अभी बताई है क्योंकि उनका ऊपर का यानी लास्ट एज तक वो सारे है इससे। ऐसी ये तो कोई प्रयोजन वाली बात नहीं है, मगर ये जो समझे तो ठीक है। देखो यहाँ लिखा ना, जीव सिद्ध जीव कहाँ है, लोग जीव तो दिखाई नहीं देता है। जीव 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 हम सुनते तो है, तो कैसे उसको पहचानना। तो जीव स्वयं को स्वयं के ज्ञान द्वारा जान सकता है। अभी मैं हूँ ऐसा तो ऐसा थे हमें, अजीव है हाँ मैं हूँ, परंतु अन्य जीवों को देख नहीं सकता। हमें क्या दिखता है, शरीर ही दिखते हैं, जीव तो नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, अरूपी है, अमूर्तिक है। इस परिस्थिति में जीवों को कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढने पर जीव पाए जाते हैं, इस बात की जानकारी हमें मार्गणा द्वारा प्राप्त होती है। यानी मार्गणाएं क्या बताएंगी, जीवों का ऐसा वर्णन करेंगी तो हमें पहचान होगी, हाँ हाँ ये जीव है। हालात है जिनके द्वारा जीवों की जानकारी प्राप्त होती है। अभी मार्गणा का यहाँ डेफिनेशन बता रही हूँ, जिनके द्वारा जीवों की जानकारी प्राप्त होती है या जिनमें जीव पाए जाते हैं वे मार्गणा है। मार्गणा यानी अन्वेषण, खोज, यानी उसका हम सर्च करते हैं ना, जीवों को ढूंढना है हमको, खोज करनी है जीवों की, तो कहाँ ढूंढे तो मिलेंगे, तो ये मार्गणाएं हमको बताएंगी कि ये जीव है। इन मार्गणाओं में हम जीव की खोज कर सकते हैं, जीवों का अनुमान कर सकते हैं। इन मार्गणाओं के द्वारा हम यहाँ जीव है ऐसा निश्चित कर सकते हैं। कुछ विवक्षित लक्षणों, अभी ये मार्गणाएं क्या बताएंगी, कुछ लक्षण बताएंगे, संयोग बताएंगे, शरीर इंद्रियों या अन्य विभिन्न अपेक्षाओं द्वारा सभी संसारी जीवों का विभाजन करने में आता है। ये सिद्धों को तो हमने अलग रखा, अब जो जो संसारी जीव है उनमें हम लक्षणों के द्वारा उसमें विभाजन करेंगे। जैसे जीव समास में भी हमने देखा था ना, अब यहाँ अलग अलग लक्षण बताएंगे मार्गणा में। अब इसके लिए पहले उदाहरण देके, दृष्टांत देके समझाया, जैसे देश की अपेक्षा, अभी हमको मनुष्य हम कहते हैं तो मनुष्यों को हमको डिवाइड करना है, तो पहले हम कौन से एस्पेक्ट लगाएंगे, तो देशों की, अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, तो हम मनुष्यों को कैसा विभाजित करेंगे, जापानी, अमेरिकन, इंडियन, बराबर है, कोई चाइनीज, ऐसे देश की अपेक्षा से हमने उनके ग्रुप्स बनाएंगे अलग अलग। तो देश की अपेक्षा मनुष्यों का विभाजन करने पर कोई भारतीय, कोई जापानी, कोई अमेरिकन आदि विभाजन होगा। अब हम दूसरा क्राइटेरिया लगाएंगे, सारे ही मनुष्यों को एक क्राइटेरिया क्या लगाया, देश की अपेक्षा विभाजन किया। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या लगाएंगे कि व्यवसाय की अपेक्षा विभाजन करने पर प्रोफेशन, तो कोई डॉक्टर, तो भले वो डॉक्टर जापानी हो, अमेरिकन हो या इंडियन हो, वो सारे के सारे डॉक्टर से वो डॉक्टर वाले ग्रुप में हम गिनेंगे उसको। डॉक्टर हो गए, कोई इंजीनियर हो गए, कोई व्यापारी हो गए, कोई सर्विस करने वाले हो गए, अलग अलग क्राइटेरिया, उनके अलग अलग ग्रुप बनेंगे। तो व्यवसाय की अपेक्षा विभाजन करने पर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई व्यापारी, तो कोई व्यवसाय रहित, कोई किसान, तो कोई कामगार हो गए। अपेक्षा बदलने पर एक ग्रुप के व्यक्तियों का वापस अन्य ग्रुप में विभाजन होगा। ये पहले बात समझ लेना, पूरे हमने मनुष्य लिए, पहले देश की अपेक्षा विभाजन किया तो उनके अलग अलग ग्रुप बने। अब दूसरा क्राइटेरिया लिया, वो पहली अपेक्षा भूल जाओ। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या लिया कि उनका व्यवसाय क्या है, तो सारे ही डॉक्टर, सब पृथ्वी पर के जितने डॉक्टर वो सब एक बाजू, सारे इंजीनियर, सारे प्रोफेशन यानी व्यवसाय करने बिजनेस वाले सारे अलग, सब सर्विस करने वाले अलग, ऐसे अलग अलग हम बनाएंगे तो उनके अलग अलग ग्रुप बनेंगे। तो अभी जो डॉक्टर वाला ग्रुप है उसमें जापानी भी हो गए, इंडियन भी हो गए, अमेरिकन भी हो गए। अभी एकमात्र क्राइटेरिया क्या है, उनका व्यवसाय क्या है। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया से अलग अलग ग्रुप बनेंगे। वैसे ही मार्गना में होता है कि हम अलग अलग क्राइटेरिया लगाकर जीवों के अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, उसी को मार्गना कहते हैं, अन्य कुछ नहीं, इतना आसान है। अभी और अपेक्षा लगाई यहाँ, स्त्री पुरुष की अपेक्षा से कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है। पूरी पृथ्वी पर जितने सारे लोग हैं वो दो क्राइटेरिया में विभाजित हो, पुरुष और स्त्री। उम्र की अपेक्षा, अभी उम्र की अपेक्षा से हम डिवाइड करेंगे तो कोई बालक है, कोई जवान है, तो कोई वृद्ध है। अब बुद्धि के क्राइटेरिया, इंटेलिजेंस की हमने लगाई, तो बुद्धि की अपेक्षा कोई बुद्धिमान है तो कोई मतिमंद है, अन्य कितने ही साधारण बुद्धि वाले हैं। अब धन की अपेक्षा लगाएंगे, किसके पास कितना पैसा है, तो धन की अपेक्षा कोई सधन है तो कोई निर्धन है, यानी कोई श्रीमंत है कोई गरीब है, वो धन का क्राइटेरिया लगाया। इसी प्रकार ये तो उदाहरण के लिए सारा समझाया, अब हम अपना मूल विषय जो मार्गना है उसको समझाएंगे। इसी प्रकार 14 मार्गना द्वारा यानी 14 भिन्न भिन्न अपेक्षाओं द्वारा जीवों का भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजन होता है। अब ख्याल में आया ना मार्गना ने क्या कि यहाँ 14 अलग अलग आस्पेक्ट क्राइटेरिया हम बताएंगे, एक एक क्राइटेरिया के साथ जीवों के अलग अलग ग्रुप बनेंगे, फिर दूसरी अपेक्षा लगाएंगे तो और अन्य अन्य ग्रुप बनेंगे, तीसरी अपेक्षा से और अन्य अन्य ग्रुप बनेंगे इंसान। हाँ बिल्कुल, वो एक 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 अपेक्षा से जितने ग्रुप बनेंगे दूसरी अपेक्षा से वो वापस अन्य में जाएंगे। ये आपने टेबल सर देखा था ना, ये जब हम देखेंगे ना ये क्या क्या क्राइटेरिया, तब पता चलेगा कि एक ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप में कैसे जाते हैं। जीवों का भिन्न भिन्न प्रकार से विभाजन होता है। एक मार्गना के एक ग्रुप वाले जीव अन्य मार्गना की अपेक्षा अलग अलग ग्रुप में शामिल होंगे। देखो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ भी आया, क्या बताया, अभी एक मार्गना की अपेक्षा जो हमने ग्रुप बनाए, गति मार्गना की अपेक्षा हमने बताए तो चार ग्रुप हो गए। अभी उसमें अन्य कोई अपेक्षा लगाएंगे तो वो सारे एक ग्रुप के लोग अन्य में चले जाएंगे। जैसे अभी वो पहला वाला उदाहरण फिर बताया, व्यवसाय की अपेक्षा जो डॉक्टर है वह देश की अपेक्षा भारतीय होगा या अमेरिकन, स्त्री पुरुष की अपेक्षा स्त्री होगी या पुरुष, उम्र की अपेक्षा जवान होगा या वृद्ध परंतु बालक नहीं होगा डॉक्टर की अपेक्षा। सर्वप्रथम हम 14 मार्गना के नाम देखेंगे, पश्चात उनका स्वरूप देखेंगे। अभी देखो हम ये नाम याद अभी देखेंगे क्रम से बोलेंगे तो कल तो आपको याद हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कहती करो, वो तो होने वाला है। देखो पहले हम गिनेंगे, मेरे बाद आप भी इसको रिपीट करना, गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना, काय मार्गना, योग मार्गना, वेद मार्गना, कषाय मार्गना, ज्ञान मार्गना, संयम मार्गना, दर्शन मार्गना, लेशा मार्गना, भव्य मार्गना, सम्यक्त्व मार्गना, संगी मार्गना और आहार मार्गना। देखो ऐसे उंगली पर गिनाना आना चाहिए ऐसे, यहाँ गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना, काय मार्गना, योग मार्गना, वेद मार्गना, कषाय मार्गना, ज्ञान मार्गना, संयम मार्गना, दर्शन मार्गना, लेशा मार्गना, भव्य मार्गना, सम्यक मार्गना, संगी मार्गना और आहार मार्गना, ऐसे 14 मार्गना। बराबर, अब देखेंगे क्या क्या है। अब गति मार्गणा देखेंगे। गति के नाम सुने हैं, कितने हैं गतियाँ? अच्छा बराबर, क्योंकि यहाँ हम संसार हम ये नई कला सीखते हैं, लिप रीडिंग तो आवाज तो सुनाई नहीं देती है, तो आपके लिप से पता चलता है कि आप ठीक बोल रहे हैं, यानी आपने ठीक उत्तर दिया या मुझे पता चल गया है पता है एकदम कॉन्फिडेंटली जोर से बोलना देखो गति मार्गणा में सभी संसारी जीव, सभी संसारी लिए सिद्धों को अलग लिखा, उनके पंचम गति वाले कहते हैं ना सिद्धों को, जो सिद्ध गति या पंचम गति कहते हैं, अभी उनकी बात यहाँ नहीं है। गति की अपेक्षा चार गतियों में पाए जाते हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। गति नामक नाम कर्म के उदय से जीव उस विवक्षित पर्याय में उत्पन्न होता है। इनमें नरक, मनुष्य और देव गति के जीव संगी पंचेंद्रिय ही है, परंतु तिर्यंच गति में कितने जीव है? तिर्यंच गति में तिर्यंच गति में एक इंद्रिय के, दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय के, चार इंद्रिय के, पंच इंद्रिय है, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच कुत्ता है, बिल्ली है, हमने देखा था जो ट्रेंड करते हैं सर्कस में, हाथी है, सिंह है, ये कौन है? संगी पंचेंद्रिय, ये सारे ही कौन है? तिर्यंच। यानी मनुष्य कौन है? संगी पंचेंद्रिय, देव, नारकी और तिर्यंच, एक से पांच। देखो तिर्यंच में बहुत वैरायटी है, ये सारे एक इंद्रियों से लेकर पृथ्वी का एक जीव कौन है? कौन सी गति का जीव है बोलो? एक इंद्रिय है तो कौन सी गति होगी उनकी? तिर्यंच। जल का एक जीव कौन से गति का जीव है? अभी वही फॉर्मूला लगाओ ना, जल का एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय जीव कौन से गति के होते हैं? तिर्यंच गति। ये यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो कौन से गति के जीव है? हमें क्या लगता है? तिर्यंच गति, यानी वो जानवर है जो उतने ही खाली तिर्यंच गति, ऐसा नहीं है, ख्याल आता है? ये लत है, कीड़े है, या ये मक्खी है, ये सारे कौन है? तिर्यंच गति के जीव। मुख्य जो पांच स्थावर है ना, उनको तिर्यंच कहने में जरा मन ऐसा हो जाता है। वो अग्नि का एक चूल्हा जलाते हैं ना, वो क्या है? तिर्यंच गति का जीव है। कितना आसान है, कल मत बताना तिर्यंच हमारी रसोई बना देते बालबोध पाठमाला में गति नामक पाठ में तुमने विस्तार से पढ़ा ही है। ये गति वाले पाठ में हमने देखा था कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे तिर्यंच तक है। ये गति मार्गणा ख्याल में आएंगे, ये तो आसान है एकदम। कितनी है गतियाँ? चार है। और ये विग्रह गति नाम की कौन सी गति है दीपाली? हाँ, कौन से दो शरीर होते हैं? तेजस और कारमान। और उसमें भी ये जो मनुष्य गति होगी या देव गति होगी वो भी वहां चल रही होगी, है ना? देवायु, कोई मनुष्य गति का जीव मर गया, अभी वो दूसरे समय अभी विग्रह गति में है। विग्रह गति है एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर धारण करने के पहले वाली जो उसकी गति है, उसका गमन है जो, वहाँ उसको विग्रह गति, वो कोई गति नहीं है। ये मनुष्य गति, तिर्यंच गति, ऐसी गति नहीं। वो गति गति शब्द सेम है ना, इसलिए मैंने उसका नाम लिया यहाँ। तो ये पांचवी गति नहीं है कोई। तो विग्रह गति में भी जीव की जो अन्य आने वाली जो है ना, जो आयु चालू हो गई, उसकी गति भी चालू हो गई वहाँ से। देवायु का प्रारंभ हो गया ना दूसरे समय से, तो देव गति भी चालू हो गई उसकी। वो देव गति वाला वो मनुष्य का आकार अभी नहीं निकालना यहाँ। इंद्रिय मार्गणा चलो अभी हम दूसरी मार्गणा पढ़ेंगे। पहली मार्गणा में कितने ग्रुप किए? चार। अभी यही ग्रुप वाले जीव दूसरी मार्गणा में अलग अलग यहाँ वहाँ बिखर जाएंगे। तो देखो अभी इंद्रिय मार्गणा, ये तो इंद्रिय मार्गणा आसान है क्योंकि हमने जीव समास में एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक गिनाए थे। देखो इंद्रिय मार्गणा का विचार करते हुए सर्वप्रथम इंद्रिय क्या है देखते हैं। द्रव्येंद्रिय तो हम देखते हैं, हम उनसे परिचित हैं। द्रव्येंद्रिय ने ये आँख नाक कान ये सारे दिख रहे हैं ना, ये सारे द्रव्येंद्रिय। इंद्रिय दो प्रकार के हैं, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर भावेंद्रिय होता है। कौन से दो इंद्रिय हैं? द्रव्येंद्रिय। अब भावेंद्रिय किसको कहना? लब्धि और उपयोग। अभी इसका अर्थ क्या है वो समझेंगे। ये सारे शब्द आपके लिए नए मालूम है, फिर भी एक बार तो सुन लो। मति ज्ञानावरण के क्षोक्षम से, यानी जो ज्ञानावरण कर्म है उसके क्षोक्षम से इंद्रियों के विषयों को जानने की जीव की शक्ति लब्धि है। अभी ये जो डेफिनेशन है ना, ये तो मूल पुस्तक में से ऐसी की ऐसी ली हुई है। अब उसको पढ़कर फिर उसका अर्थ देखते हैं। और विषय जानने के प्रवर्तन रूप कार्य अर्थात व्यापार उसको उपयोग कहते हैं। अब उसको समझाया आगे। जैसे बालक को सुनने की शक्ति तो है परंतु उसका उपयोग अन्यत्र खेलने या देखने में लगा हो तो उसे पुकारने पर भी उसे आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे आप टीवी देख रही हो और मम्मी अंदर से पुकारती चलो भोजन लगाया है खाना खाने चलो जल्दी, तो फिर दोबारा 5 मिनट के बाद आकर पुकारती है आपने मुझे बुलाया नहीं मैंने सुना ही नहीं, ऐसे कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग कभी अन्यत्र लगा है। यानी शक्ति तो है सुनने की, कि सुनने की शक्ति रहित हो गए। सुनने की शक्ति है परंतु अपना उपयोग तो देखने में कहीं लगा है। तो हाँ, तो कान पर शब्द आते हैं फिर भी अपना ध्यान वहां नहीं चला जाता, तो उसको कहते हैं वो उपयोग। इसके विपरीत ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा कि जो जानना तो चाहता है परंतु क्षोक्षम रूप शक्ति के अभाव में वह जान नहीं सकेगा। इसलिए लब्धि और उपयोग दोनों मिलाकर विषयों का ज्ञान होता है। विषय ने ऑब्जेक्ट कोई जो सामने रखा है, जैसे आवाज को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि यहाँ लब्धि रूप यानी वो उसकी शक्ति है, क्षोक्षम रूप ज्ञान है कि सुन सके, इतनी ज्ञान की हमारी पावर है। और फिर उपयोग भी है। नहीं, वो लब्धि वाली वो पर्याप्ति अलग, वो पर्याप्ति अलग, वो बिल्कुल जहाँ जन्म लेता है वहाँ एक छोटे अंतर्मूर्त में वो पैदा हो जाती है। और ये लब्धि यानी प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ही है ये लब्धि रूप और उपयोग रूप। हाँ, ज्ञान की पर्याय, प्रत्येक ज्ञान की पर्याय लब्धि और उपयोग रूप है। अभी हमारा उपयोग कहाँ लग रहा है? यहाँ शास्त्र में। और लब्धि में क्या क्या है? आपका सारा बाकी जो नॉलेज है। अभी मैं यहाँ शास्त्र का अभ्यास करें और मेरा जो मेडिकल का नॉलेज है वो सारा ही लब्धि रूप है, प्रकट पर्याय में। ऐसा नहीं कि मुझे याद करने के बाद मालूम पड़े, ऐसा नहीं है। हर समय हर पर्याय में वो विद्यमान है। जो जो ये सारा धारणा रूप है ना, तो वो हर पर्याय में वो उसकी वो चलता रहता है, लब्धि रूप वो चलता रहता है। अभी तक अपने पास जितना अभी आपको इतिहास का नॉलेज है, भूगोल का है, गणित का है, रसोई का है और बाह्य अन्य भी चीजें है जो कुछ, वो सारे आपके प्रकट पर्याय में लब्धि रूप से है, वो उपयोग रूप है। बाकी जो जो सारा है वो, हाँ, वो स्टोर में ने अंदर को ही पड़ा है और जब चाहे वो पर्याय में प्रकट होगा, इसी बात नहीं है। प्रकट पर्याय में है। ज्ञान की पर्याय कितनी है? अकेले उपयोग रूप इतनी नहीं है, लब्धि और उपयोग मिलकर ये पूरी ज्ञान की पर्याय है। ये चार ज्ञान का धारी कहते हैं, तो चार ज्ञान के धारी है तब एक समझो उनका उपयोग अवधि में लगा है। तो मति श्रुत और बाकी जो मन परे वो चले गए क्या? तो प्रकट पर्याय में वो उनका ज्ञान है, ख्याल में है ना? उपयोग, हाँ, नहीं नहीं लब्धि आवरण नहीं है, यूटिलाइजेशन में नहीं है वो। देखो द्रवेंद्र तो शरीर के विवक्षित स्थान की रचना है, चिन्ह है ना, ये आंखें हैं, अभी ये द्रवेंद्रिय हुआ, कर्ण विकर्ण है, कर्णेंद्रिय, यानी क्या वो शरीर के चिन्ह है, शरीर की रचना है। निवृत्ति और उपकरण रूप द्रवेंद्रिय जानना, जिन प्रदेशों से जाना जाता है वे निवृत्ति कहलाते हैं और उसके निकटवर्ती उपकरण है, यानी एक्चुअली हम जो ये सारे देखते हैं ये सारे उपकरण है। निवृत्ति यानी वहाँ के जो प्रदेश जिसके द्वारा वो जाना जाता है एक्चुअली। अब जैसे कान में, ये तो पूरा कान है परंतु वहाँ वो जव के नाली के बराबर इतना ही है ना, उतने प्रदेशों से जाना जाता है। ये जो नाक में तो ये दिखने के लिए इतना है परंतु अंदर वो तिल के पुष्प के समान वो जो है सेंसरी ऑर्गन एक्चुअली। आंख तो ये इतनी है परंतु ये पुतली जो है अंदर की मसूर के आकार के समान, मसूर के दाल के आकार के समान, वहां से वो जानने रूप होता है तो उसको निवृत्ति कहते हैं। और वो बाह्य जो है वो सारा उपकरण, ये उपकरण उसके सारे, हाँ ये उपकरण है, हाँ वो निवृत्ति नहीं द्रविंद। प्रदेश ने भावेंद्रिय समझना है प्रदेशों से, परंतु ये प्रदेश ने यहाँ एक्चुअली जहाँ कार्य हो रहा है उसका सेंसरी ऑर्गन जिसको हम कहते हैं, और उसके बाह्य, ये तो मेडिकल में भी कहते हैं ना फिजियोलॉजी में कि एक्चुअल जानने का कहाँ होगा, ये रेटाइना पर होता है, वो तो अंदर पड़ा है और ये बाहर सारा जो आई जो है पूरा आई बॉल है, आई लैशेस है, ये पूरा है, ये सारे उसके यहाँ उपकरण है। पहले हमने जीव समास में जीवों के एक इंद्रियादि भेद देखे थे इंद्रियों की अपेक्षा से, अब ये 14 भेद नहीं होंगे इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा में पूरे जीवों के 5 ही भेद होंगे। कौन से 5 हो गए बोलो सिद्धार्थ? हाँ 5 वो असंगी असंगी इसमें भेद नहीं डालेंगे क्योंकि ये इंद्रिय मार्गणा है। इंद्रिय मार्गणा खाली इंद्रियों की अपेक्षा जीवों के भेद किए, एक इंद्रिय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इसमें पीरियंस कहाँ कहाँ बैठेंगे, सारों में सारे ग्रुप में पीरियंस है, देव कहाँ है अकेले 5 इंद्रिय में, मनुष्य यहाँ पर, नारकी यहाँ पर, तो ये 5वां जो है इसमें सारे चारों ही गति के जीव होगी ना। देखो ये ग्रुप कैसे बदल रहे, पहले 4 गति की अपेक्षा तीर्यंत्र देव मनुष्य और नारकी, अब इसमें से चारों में से पंचेंद्रिय यहाँ लिए और फिर अन्य जो तीर्यंत्र है उसको एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये ग्रुप कैसे बदल रहे हैं देखो अभी। ये तो इंद्रिय मार्गणा और पहली गति मार्गणा, ये 2 हो गई मार्गणा। देखो इंद्रियों की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय 5 भेद होते हैं। अब अगली काय मार्गणा देखेंगे हम, तो काय मार्गणा में काया यानी शरीर की अपेक्षा से सभी संसारी जीवों का विभाजन किया हुआ है। हम देखते हैं ना कि षट काय जीवों की हम रक्षा करते हैं ऐसा कहते हैं ना, तो ये षट काय यानी काय की अपेक्षा कितने भेद होंगे 6। षट काय जीवों की हिंसा से हमें बचना चाहिए, यह शास्त्र वचन तुमने पढ़ा होगा। ये षट यानी 6 काय कौन से हैं? क्या इसकी जानकारी है तुम्हें? नहीं होगी तो सुनो, उसमें से 1 त्रस्काय है और शेष 5 स्थावर काय है। स्थावर किसे कहते हैं? एक इंद्रियों को स्थावर कहते हैं, जो पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, वो जो है ना जल का एक जीव, पृथ्वी का एक जीव, ये सारे जो 5 है कौन कौन से पांच? पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक और वनस्पति कायिक। ये पांचों क्या कहलाते हैं? स्थावर। ये पांच हुए और एक त्रस हुआ। देखो ये एक पहले तो हमने इंद्रिय मार्ग नाम में क्या किए थे? पांच भेद किए थे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय, वो सारा एक इंद्रिय वाला ग्रुप इसमें आया। उसके पांच हुए, एक ग्रुप के यहाँ पांच हुए, पांच स्थावर हुए और सारे दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय मिलकर एक तिरस्कार हुआ। समझे ना कैसे भी ग्रुप बदल रहे है। इंटरसेक्शन, सारे ही एक इंद्रियों के पांच ग्रुप अलग अलग हुए, स्थावर, पांच स्थावरों को अलग अलग गिनाया और सारे ही त्रस दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के सारे ही इसमें आ गए, त्रस में आ गए। तो मनुष्य गति वाले कहाँ है? त्रस में। देवगति वाले और नारकी और इन तिरंचों में से कौन कौन त्रस में आए? वो तो संगी हुए। हाँ, दो इंद्रिय, दो इंद्रिय बताए नहीं, उसने ट्रेन किए जाते बताया। हाँ, वो संगी हो गए, वो तो होते ही है त्रस। और उसके अलावा और कौन होते हैं? द्विंद्रिय वाले, तीनद्रिय वाले, क्योंकि एक इंद्रिय को अलग निकालना है खाली, ख्याल आया कि नहीं? तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय सारे ही तिर्यंश त्रस में आ जाएंगे। बराबर समझ में आ गया? वनस्पति काई किस में हो गए? स्थावर में। अभी हमारी स्थावर काय और त्रस काय की बात चल रही है, काय मार्गना चल रही है। तो काय मार्गना में छह ग्रुप हो गए, स्थावर एक ग्रुप नहीं करना, स्थावर के पांच अलग अलग गिनना और त्रस का एक ही गिनना, छह है इसमें ग्रुप, तो षट काय हो जाएंगे। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक पांच स्थावर या स्थावर काय जीव है। उन्हें स्थावर नाम कर्म का उदय रहता है। द्विंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को त्रस या त्रस कायिक जीव कहते हैं। उन्हें त्रस नाम कर्म का उदय वर्तता है। देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंचों में किसको लेना? द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के तिर्यंच त्रस जीव है। यहाँ तक ख्याल में आया ना कि बहुत फास्ट हो रहा है? ख्याल में आता है ना ये क्यों सिद्धांत? हाँ, पृथ्वी कायिकों में, अभी पृथ्वी कायिक कौन कौन है देखो। पृथ्वी, मिट्टी, रेत, पत्थर, हीरा, माणिक, रत्न, कोयला, ये अंदर से निकाले ना, दगड़ी कोलता वगैरह उसकी खान आती है ना। जल कायिकों में कुआं, झरना, नदी आदि का जल, कोहरा, ओस आदि का जल, इनका समावेश होता है। ये सारे जल कायिक है। वायु कायिकों में घनोदधिवात, घनवात, तनुवात आदि भेद है। अग्नि कायिकों में भी विभिन्न प्रकार के अग्नि, यानी चिंगारी अग्नि, जलता हुआ कोयला, बिजली, इलेक्ट्रिक करंट आदि है। ये सारे अग्नि कायिक है। उपरोक्त सभी बादर स्थावर जीव है, क्योंकि हमें दिखते हैं ना और किसी के आधार से है, उनका समुदाय हमें आंखों से दिखाई देता है। इन पांचों स्थावरों के सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। उस दिन हमने सूक्ष्म जीवों की बात की थी, वे आंखों से तो दिखते ही नहीं, अन्य वस्तुओं से रोके भी नहीं जाते। ये दोबारा सारा रिपीट किया यहाँ सूक्ष्म की बात। वे स्वयं भी अन्य किसी को रोकते नहीं है और किसी के आधार बिना ही रहते हैं। पहले हमने बताया था, याद है ना, प्रत्येक स्थावर में तीन तीन भेद होते हैं। पृथ्वी के उदाहरण से इन भेदों को समझेंगे। उनमें तीन भेद है, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक जीव और पृथ्वी काय। अब ये कैसे भेद है उसको समझेंगे। कोई जीव पूर्व पर्याय को छोड़कर, यानी कहीं से मरकर पृथ्वी कायिक में जन्म लेने के लिए गमन करते हुए जब तक विग्रह गति में रहता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में अभी है, उसमें चल रहा है उसकी ओर, तब तक उसे पृथ्वी जीव कहते हैं, यानी उसकी पृथ्वी की आयु चालू हो गई है, उसकी गति भी चालू हो गई, वो तिरंश गति भी चालू हो गई उसकी, यानी वो पृथ्वी जीव कहलाएगा। मनुष्य था, अब पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला है, विग्रह गति में है, तो वो जीव कौन सा है? अभी उसको मनुष्य जीव नहीं कहेंगे, वो पृथ्वी जीव हो गया। जब वह पृथ्वी रूप शरीर को धारण करता है तब उसे पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं। हमने देखा था ना, वहाँ जाके आहार ग्रहण करेगा, नहीं वो परमाणु ग्रहण करेगा, उसको पलटाएगा, अपने शरीर रूप से परिणाम आएगा, तब उसको पृथ्वी कायिक जीव कहेंगे। पृथ्वी कायिक जीव मरकर अन्यत्र गमन करता है तो उसका शरीर रह जाता है, उसे पृथ्वी काय कहते हैं। ये जो धातु है, सोना है, ये जो हीरे माणिक पहनते हैं हम, उसमें से जीव निकल गया है और वहाँ उसका काय रह गया है। ऊपर बताए हुए तीनों ही भेद जिसमें गर्भित है, ऐसा सामान्य रूप पृथ्वी नामक चौथा भेद भी शास्त्रों में कहीं कहीं बताया है, जिसमें कोई भेद नहीं ऐसा सामान्य। ये बात पंचाध्याय में आई थी कि वहाँ हमने सामान्य और विशेष ऐसे दो भेद किए, और ये दो भेद भी जिसमें नहीं ऐसा वाला सामान्य वहाँ बताया। वैसे ये कि ये तीनों ही भेद जिसमें नहीं ऐसे सामान्य से जिसको कहेंगे, वो सामान्य वाला तीसरा भेद, चौथा भेद। इस तरह ये चार चार प्रकार सभी स्थावर जीवों में पाए जाते हैं। वो तो पुद्गल है ना, मनुष्य मर गया, अब वो पृथ्वी जीव कहलाएगा। अब शरीर को तो कोई मनुष्य नहीं कहेंगे ना, हाँ वहाँ तो जीव ही नहीं रहा, तो मनुष्य काय रह गया उसका शरीर, बॉडी, हम उसको भी बॉडी कहते हैं ना, वैसे वो काय रहेगी, मगर वो उसको जला देते हैं हम। हाँ गर्भित यानी कोई ऐसा जीव नहीं कि जिसमें समय कोई भी हम उसमें डिफरेंस नहीं करेंगे, बिना डिफरेंस, हाँ सबको एक, खाली पृथ्वी कह देंगे। सामान्य पृथ्वी, ऐसा सामान्य पृथ्वी वाला चौथा, ये आलाप पद्धति यानी आलाप की हमने देखे थे, वो जीव कांड में पढ़े थे, वो अलग, वो भाषा अलग, वो पृथ्वी अलग, जो आठ पृथ्वियां होती है वो तो एक एक पृथ्वी की नहीं ना। हाँ ये तो पृथ्वी, ये तो हम भूगोल में जिसको ये कहते हैं अपना जो प्लैनेट, वो नहीं, ये चारों जिसमें है, तीनों ही भेद जिसमें गर्भित है या बिना भेद किए हुए ऐसा पृथ्वी। हाँ जीवों को भेद नहीं करेंगे, खाली जीव कह देंगे। या मनुष्य में हमने कहा ना, कोई पर्याप्त मनुष्य है, कोई अपर्याप्त मनुष्य है, और कोई स्त्रिया है, तो ऐसा कोई भेद जिसमें नहीं, ऐसा सामान्य मनुष्य, मनुष्य उसको सामान्य कहते। वनस्पति कायिकों के भेद प्रभेद हमने पहले जीव समास में देखे ही थे, या फिर एक बार उसे दोहराते हैं, ये भी हम खाली पढ़ेंगे क्योंकि हमने डिटेल में कल देखा था सारा। वनस्पति कायिकों के कायिक जीवों के मुख्य दो भेद है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में एक जीव, और हाँ जितना होगा उतना ले लेंगे, और सात सात मिनट जितना होगा उतना देखेंगे। देखो वनस्पति कायिकों की मुख्य दो भेद, प्रत्येक वनस्पति और साधारण। प्रत्येक किसको कहा था हमने, एक शरीर में एक जीव, और साधारण एक शरीर में अनंत जीव। प्रत्येक वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में एक जीव, और साधारण वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में अनंत जीव। साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं, उनका शरीर एक, श्वासोश्वास एक, जन्म एक साथ, मरण एक साथ, आयु समान, पर्याप्ति समान आदि विशेषताएं हमने पहले देखी ही थी। प्रत्येक वनस्पति बादर एकेंद्रीय जीव है, सूक्ष्म में प्रत्येक, सूक्ष्म में वो साधारण और प्रत्येक ऐसा है, सूक्ष्म में तो हाँ सूक्ष्म और बादर जो हमने भेद किए थे ना, तो प्रत्येक वनस्पति क्या है, बादर एकेंद्रीय जीव है। यानी बादर में दो भेद होते हैं, साधारण और प्रत्येक। पहले हमने सूक्ष्म के और बादर ऐसे किए थे, एक इंद्रियों के दो भेद किए थे, वहाँ वनस्पति कायिकों के भी दो भेद हो गए, सूक्ष्म और बादर। फिर बादर में प्रत्येक और साधारण, सूक्ष्म में भी साधारण वनस्पति होती है। हाँ, ये नीचे का जिन प्रत्येक, अच्छा प्रत्येक वनस्पति बादर एक इंद्रिय जीव है, उनके सप्रतिष्ठित अर्थात प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ऐसे दो भेद है। प्रतिष्ठित किसे कहता कहा था हमने, याद है? जिसके आधार से बादर निगोद जीव रहते हैं उसको प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित कहते हैं, और जिसके आधार से नहीं रहते वो अप्रतिष्ठित। जिन प्रत्येक वनस्पति के आधार से साधारण वनस्पति का एक जीव रहते हैं उन्हें प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जैसे पेड़ के अत्यंत कोमल छोटे छोटे पत्ते कि जिसमें नस या सिराएं नहीं दिखती, अत्यंत छोटे फल ककड़ी आदि कि जो तोड़ने पर समभंग होता है, छोटी जीव नहीं रहते, इसलिए अब उन पत्तों फलों को अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जो पहले प्रतिष्ठित है वही बढ़ने पर अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार के वनस्पति में पर्याप्त और अपर्याप्त दो दो भेद पाए जाते हैं। देखो नीचे टेबल लिखा है, प्रत्येक वनस्पति के भेद बताया, साधारण के बाद में देखेंगे, या प्रत्येक के दो भेद, प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। प्रतिष्ठित में भी पर्याप्त अपर्याप्त और अप्रतिष्ठित में भी पर्याप्त अपर्याप्त। इस तरह प्रत्येक वनस्पति के चार भेद हमने देखे। अब साधारण वनस्पति यानी निगोद के भेद देखेंगे। निगोद नाम शास्त्र में हम अनेक बार पढ़ते हैं परंतु इसका अर्थ बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है। साधारण वनस्पति अर्थात निगोद के सूक्ष्म और बादर ये दो मुख्य भेद हैं। दोनों में नित्य निगोद और इतर निगोद दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब नित्य और इतर का अर्थ देखेंगे। नित्य निगोद का अर्थ है कि जो जीव अनादिकाल से आज तक निरंतर निगोद पर्याय में ही जन्म मरण करते आ रहा है, अन्य किसी भी पर्याय में उन्होंने एक बार भी जन्म धारण नहीं किया है। देखो नित्य निगोद किसे कहते हैं, अभी हमने तो अनादि से अब तक मनुष्य पर्याय में हम आ गए, तो किसी न किसी अन्य 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 भवों में मरते 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 जन्म मरण करते करते यहाँ तक आ गए। कोई जीव ऐसे है कि अनादि से अब तक निगोद, फिर मरकर निगोद, फिर मरकर निगोद, फिर मरकर निगोद, निगोद 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 निगोद, अभी तक एक भी पर्यायों को अन्य एक इंद्रियों की भी नहीं मिली। कभी पृथ्वी कायिक भी नहीं हुए, कभी अग्नि कायिक भी नहीं हुए, कभी जल कायिक नहीं भी हुए, कुछ नहीं। निगोद 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 करके आज तक वो निगोद में ही है, उनको क्या कहेंगे, नित्य निगोद। और एक बार भी निगोद से निकलकर पृथ्वी काय भी हुआ वापस निगोद में गया, या मनुष्य हुआ या अन्यत्र घूम घूम के वापस निगोद हुआ, कोई भी त्रस्त पर्याय पाकर फिर निगोद में गया, तो उसको कहेंगे इतर निगोद, या चतुर्गति निगोद भी कहेंगे। अनित्य निगोद है वो निगोद है, वही तो बाहर यानी, बाहर यानी नीचे से ऊपर, ऐसा नहीं, निगोद पर्याय में से बाहर नहीं निकला, ऐसी बात है। वो किसी प्लेस का नाम नहीं है, वहां से यानी निगोद में से, नित्य निगोद में से। नित्य निगोद ये जीवों की अवस्था है कि जो अनादि से अभी निगोद में ही पड़े हैं। ऐसे जीवों में से सूक्ष्म निगोद पूरे लोकाकाश में ठसोठस भरे हैं। चॉइस क्या है उसकी, वो हम अमेरिका स्विट्जरलैंड घूमते हैं, ऐसे थोड़ी भी घूमते हैं। वहाँ निकलने की बात नहीं, कहीं भी अभी हम कहाँ के मनुष्य हैं, यहाँ के, क्यों हमने चॉइस से जन्म लिया, तो ऐसे सहज होता है ना, उनका वैसे सहज कहीं के भी निगोद हो जाते हैं। कल ही इसको, हाँ ये बहुत जम्बलिंग है इसलिए इसमें टेबल बनाए हैं। बाद है, अभी समझना ये मुख्य है, याद रखने याद रहेंगे नहीं, नहीं ऐसी बात है। 608 कहीं भी लोकाघात के कहीं भी निगोद में से निकलेंगे। इतर में से तो बहुत सारे निकलेंगे, 608 तो नित्य में से निकलेंगे, इतर में से तो निकलते रहेंगे, आना जाना बना रहेगा। चलो आज का हो गया। जावानी के ज्ञान ते तुझे लोका दो, तो आनी मस्त तन वो सदा देता हूँ।